ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में सातवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलस्तीनी हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की एक स्वर से निंदा की गई। दोनों नेताओं ने गजा में जानमाल के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संघर्ष विराम और मानवीय सहायता जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए आसपास के देशों को जिम्मेदारी समझनी होगी। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और इटली साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कल नई दिल्ली में पहली साइबर वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते साइबर खतरे और राष्ट्रीय साइबर कार्यनीति पर विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण पहल के लिए सूचना तंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की। भारत और इटली ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में साइबर के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर मिलकर काम करने पर विचार विमर्श किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के देपसांग और डेमचौक क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 पे उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। बरकाठा विधानसभा सीट के लिए 70 नामांकन दाखिल किए गए। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 991 उम्मीदवारों ने 1292 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल विशाल रैली के बाद नागपुर दक्षिण पश्चिम से अपना नामांकन भरा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 4 दवाओं के चुनिंदा बैच को नकली घोषित किया है। संगठन ने लगभग 3000 नमूनों के प्रशिक्षण परीक्षण के बाद 49 दवाओं को वापस लेने को कहा है। दवाओं के 1.5% नमूने कम असरदार पाए गए। ओडिशा में चक्रवात दाना से प्रभावित केंद्रपाड़ा भद्रक बालेश्वर और जगत सिंहपुर के तटीय जिलों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल सहित कई विभाग सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। भीषण तूफान के कारण कई जिलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने आज से 7 नवंबर तक 195 विशेष फेरों की व्यवस्था की है। ये सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होंगी। अनारक्षित श्रेणी में लगभग 54,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। भारत के साथ पुणे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलेगी। न्यूजीलैंड ने अब तक 301 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम पहली पारी में 156 रन पर ही सिमट गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।